आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। अनाज का दर बढ़ रहा है, खुशी की बात है। पाट का दर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भी खुशी की बात है। 15 रुपए में साड़ी मिलती है तो 12 रुपए मन धान भी तो है। हल्का फाल 5 रुपए में मिलता है, 10 रुपए में कड़ाही मिलती है तो क्या हुआ। पाट का भाव भी तो 20 रुपए मन है, खुशी की बात है। अनाज के ऊंचे दर से गांव के 3 ही व्यक्तियों ने फायदा उठाया है। तहसीलदार साहब ने, सिंह जी ने और खिलावन सिंह यादव ने। छोटे छोटे किसानों की जमीनें कौड़ी की मोल बिक रही हैं। मजदूरों को 1.25 रुपए रोज मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। 5 साल पहले सिर्फ 5 आने रोज मजदूरी मिलती थी और उसी में घर भर के लोग खाते थे। तहसीलदार साहब ने धान तैयार होते ही न जाने कहां छिपा दिया है। दरवाजे पर दर्जनों बखार है, लेकिन इस साल सब खाली, चमगादड़ों के अड्डे हैं। सरकार शायद धान जब्ती का कानून बना रही है। कपड़े के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेटकर काम चला लेती हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे नंगे ही रहते हैं। शिवनाथ चौधरी सभा में खादी के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। आंकड़े देकर साबित कर रहे हैं कि यदि घर का एक एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गांव से गरीबी दूर हो जाएगी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। चरखा सेंटर खुल गया है, अब गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आए हैं, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। एक मास्टरनी भी आई है औरतों को चरखा सिखाने के लिए। औरतों से कहती है, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा द्वार झूले हाथी। चरखा की बदौलत हाथी, जय गांधी जी की जय। सैनिक जी और चिंगारी जी की तरह गरम भाकन शिवनाथ चौधरी जी नहीं देते हैं, लेकिन बात पक्की कहते हैं। एकदम हिसाब से सब बात कहते हैं, खूब ज्ञान की बात कहते हैं। कल का पिसा हुआ आटा नहीं खाते हैं, चीनी नहीं गुड़ खाते हैं, त्यागी आदमी है। चौधरी जी के साथ में दरभंगा जिले में तमोड़िया ट्यूशन से रमलगीना बाबू आए हैं। सुनते हैं पानी से ही बीमारी का इलाज करते हैं, आग में पकाई हुई चीजें नहीं खाते, साग की हरी पत्तियां चबाकर खाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत ताकत है। वे भी असल त्यागी हैं। देह में सिर्फ हड्डियां बाकी बच गई हैं, मांस का लेश भी नहीं। दिन भर में करीब 15 बार हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर जाते हैं। सादा कागज वाला एक फारम बटा हुआ है। फारम पर महात्मा जी की छापी है और नीचे लिखा है, बापू कहते हैं, जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। सोशलिस्ट पार्टी वालों ने भी फारम बांट किया है, लेकिन वह लाल रंग का था और उसमें एक दोहा ज्यादा था, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वह बांटेगा। बालदेव जी की जगह पर बौन दास आया है। यही पुरानिया सभा में रजिनर बाबू के सामने भाखन देता था। बालदेव जी को पुर्जी बांटने से छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए पब्लिक का काम करने के लिए बौन दास को यहाँ भेजा गया है। बड़ा बहादुर है बौन दास। कहते हैं जब 42 के मोमेंट में लोग कचहरी पर झंडा फहराने जाते थे तो मिलिट्री ने घेर लिया था। बौनदास एक मिलिट्री के फैले हुए पैर के बीच से उस पार चला गया और कचहरी के हाथा में झंडा फहरा दिया। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह इस आर्यावर्त में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं, काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं। यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान म्लेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिव जी, महाराणा प्रताप। बौद्धिक क्लास। सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है, बुद्धू क्लास। वासुदेव ही नहीं, काली टोपी वाले बहुत से जवान भी बुद्धू क्लास ही कहते हैं। लाठी, भाला और तलवार हाथ में लेते ही खून गर्म हो जाता है राजपूत नौजवानों का। उस दिन हरगौरी कह रहा था, संयोजक जी, यवनों पर मुझे क्रोध नहीं होता, यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने को जी करता है। संयोजक जी जरा दूर हट गए थे, नहीं तो हरगौरी ने इस तरह तलवार चलाई थी कि संयोजक जी की गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती। आर्जाव्रत, मेरीगंज का ही नाम अब शायद आर्जाव्रत हो गया है, लेकिन इस गांव में तो एक भी मुसलमान नहीं। गांव भर के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कालीचरण है। छोटा नेता वासुदेव सभी को समझाता है,
भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। ये तीन रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, ये तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूर को भी मेंबर बना लिया जाता है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए।
तहसीलदार साहब भी कांग्रेसी हो गए हैं। उन्होंने चरखा सेंटर के लिए अपना गुहाल कर दे दिया है, खद्दर पहनने लगे हैं। बोलते थे, सारी जिंदगी तो झूठ बेमानी करते गुजर गई, आखिरी उम्र में पुण्य भी करना चाहिए।
तहसीलदार साहब चवन्निया मेंबर नहीं बने हैं, चवन्निया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब 400 टकिया मेंबर बने हैं, देखा नहीं, शिवनाथ बाबू ने रसीद काट कर दिया और तहसीलदार साहब ने तुरंत मंधाता तंबाकू के पत्तों के बराबर 4 नंबरी नोट निकाल कर दे दिया। खड़खड़ करता था नोट। अब सोशलिस्ट पार्टी का चलना मुश्किल है, पार्टी में एक भी धनी आदमी नहीं है, मटकी कोठारिन कब तक पार्टी चलाएगी।
दफा 40 की लोटिस आई है, जिला कांग्रेस के मंत्री जी ने लोटिस भेज दिया है। सोशलिस्ट पार्टी तो जोर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री जी ने दफा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया है। बालदेव जी हाट में लोटिस बांट रहे हैं।
दफा 40 कानून पास हो गया, अधिया बटैयादारी करने वाले किसान अपनी जमीन नकदी करा लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। नया कानून पास हो गया, हिंसा बात करने की जरूरत नहीं। पुरानी कचहरी में दफा 40 का हाकिम आ गया है, दरखास्त दे दो, बस जमीन नकदी हो जाएगी।
वाजिब बात कहते हैं बालदेव जी, यदि बिना तूल फजूल किए ही जमीन नकदी हो रही है तो सोशलिस्ट पार्टी में जाने की क्या ही जरूरत। कांग्रेस का राज है, जिस चीज की जरूरत हो कांग्रेस के मंत्री जी से कहो, कानून बना देंगे। तब एक बात है, इस तरह छिटपुट होकर कहने से कांग्रेस के मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी को एक जगह मिलना चाहिए, मिलकर एक ही बात बोलनी चाहिए। 10 मिलकर करो काज, हारो जीतो क्या है लाज। गलती तो पब्लिक ही है, कोई कांग्रेस में तो कोई सोशलिस्ट में तो कोई काली टोपी में। इस तरह तितर बितर रहने से पब्लिक का भलाई नहीं हो सकती।
बालदेव जी ठीक कहते हैं।
40 BT Act,
सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी कामरेड कालीचरण को समझाते हैं।
40 BT Act तो कोई नया कानून नहीं है, ये तो पुराना कानून है, कांग्रेस के मंत्री ने पर्चे बंटवाए हैं। ठीक है, आप भी गांव के किसानों से कहिए कि जितने बड़े किसान हैं सबों के जमीन पर धावा कर दे, कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं देगा। कानून से क्या होता है, असल चीज है साबित करना, सबूत पक्का होना चाहिए, गवाहों के इजहार में भी जरा डेढ़ भेड़ नहीं हो। ये तो तभी हो सकता है जब सभी गरीब एक झंडे के नीचे एक पार्टी में एक सूत्र में बंध जाएं। तहसीलदार साहब कांग्रेसी हो गए हैं, बस उन्हीं की जमीन पर किसानों द्वारा दावा करवा दीजिए, रंग खुल जाएगा। तब देखिएगा कि कांग्रेस के मंत्री जी की नोटिस बाजी की क्या कीमत है। लाल पताका के इस अंक में चिंगारी जी का इस संबंध में एक विशेष आर्टिकल है, ज्यादा कॉपी ले जाइए इस बार।
दफा 40 आधी और बटैयादारी करने वाले को जमीन पर सर्वाधिकार दिलाने का कानून है, लेकिन कानून में छोटा सा छेद भी रहे तो उससे हाथी निकल जा सकता है। जितने दफा 40 के हाकिम नियुक्त हुए हैं सभी या तो जमींदार अथवा बड़े बड़े किसानों के बेटे हैं, उनसे गरीबों की भलाई की आशा बेकार है। लेकिन एकता की शक्ति कानून से भी बढ़कर है। सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे होकर हम प्रतिज्ञा करें कि जमींदारों और बड़े किसानों के पक्ष में गांव का एक बच्चा भी गवाही नहीं देगा। लाल पताका आधीदारों को विश्वास दिलाता है, कहना वाजिब है।
बात वाजिब नहीं, ये बात का बतंगड़ है।
ज्योतिगी जी सभी बात में मीन मेक निकालते हैं।
2 भैंस की लड़ाई में दूब के सिर आफत, कांग्रेस और सुशलिंग आपस में लड़ रहा है, दोनों अपना अपना मेंबर बनाना चाहता है। चक्की के 2 पार्ट में गरीब लोग ही पीसे जाएंगे।
गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी रहने से काम नहीं होता है, जब 2 दलों में मुकाबला और हिडिस होता है तो फायदा पब्लिक का ही होता है। उस बार रोथट मेला में विदेशी नाच वाला आया था, मन लगाकर ना तो नाच करता था और ना गाना ही अच्छी तरह गाता था। तीसरे दिन बलवाही नाच का भी एक दल आ गया, दोनों में मुकाबला हो गया। शाम ही से दोनों ने नाच शुरू किया, कितना गजल, कव्वाली, घेमटा और दादरा गाया इसका ठिकाना नहीं। सूरज उगने तक दोनों दल वाले नाचते ही रहे। तब मेला मैनेजर बाबू ने दोनों दलों को लोगों को समझा बुझा कर नाच बंद करवाया था।
चलित्तर कर्माकर आया है, किरांती चलित्तर कर्माकर, जाति का कमार है, घर सेमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मिलिट्री इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था, बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय जितने सरकारी गवाह बने थे सबों के नाक कान काट लिए थे चलित्तर ने। बहादुर है, कभी पकड़ाया नहीं, कितने सीआईडी को जान से खत्म किया। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इसके नाम से थर थर कांपते थे। ज्यों ही चलित्तर का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा कि सीसी सटक,
दीजिए चंदा, 50 नहीं 500 से कम एक पैसा नहीं लेंगे। नहीं है, चाबी लाइए तिजोरी की। नहीं, ठाए ठाए।
10 खूनी केस उसके ऊपर था लेकिन कभी नहीं पकड़ा गया। आखिर हारकर सरकार ने मुकदमा उठा लिया। क्रांति चलित्तर कर्माकर कालीचरण के यहां आया है, बस तब क्या है, करेला चढ़ा नीम पर, चलित्तर भी सोशलिस्ट पार्टी में है, तब तो जरूर बम पिस्तौल के टरेनी ही देने आया है। बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी, हाथी के आगे पिद्दी। चरखा करघा, लाठी भाला और बम पिस्तौल, 3 टरेनी।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।